नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली STET के लिए आवेदन करेंगे। राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन में चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मॉनसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए बिहार के 5 समेत 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं।
कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हच्चू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पटना के पापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी।
मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है सर। क्या बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा सर।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के चौथे चरण TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि TRE4 का विज्ञापन जारी होने से पहले STET का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि TRE4 परीक्षा में बैठने के लिए STET पास करना अनिवार्य होगा।
इन दिनों बड़ी संख्या में STET के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो TRE4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से STET के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे। और BPSC जब भी TRE4 की विज्ञापन जारी करेगी तो BPSC में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो STET की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाए।
भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। सिवान में भी पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के लोक भवन मार्च को जदयू ने राजनीतिक दिखावा बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद राजनीतिक लाभ के लिए इस मार्च का आयोजन कर रहा है।
अभी राजभवन मार्च होता है, ये पॉलिटिकल इवेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक MLA लोग साथ में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी ओपोजिशन में रहे हैं तो हम लोगों ने भी किया है, अपनी बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल। ओपोजिशन का ये काम है, सरकार के बातों से जिस बात से सरकार से नहीं अवगत होते हैं उनको राजभवन जाके अपना ज्ञापन देते हैं।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्रदेश में जिस किसी भी कंपनी की शराब पकड़ी जाएगी उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।
बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल रहेगा। हम लोगों ने विभाग में निर्देश दिया है कि जो भी विदेशी शराब पकड़े जाते हैं उस कंपनी पर हम लोग FIR करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। 10 साल से जितना शराब पकड़े गए हैं उससे अधिक इस वर्ष पकड़े गए हैं और ये आगे भी हम लोग पकड़ेंगे।
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि समारोह में होने वाले झंडोत्तोलन और परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
घर घर तिरंगा, हर घर
प्रदेश में स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सोनपुर रेल मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें रेल कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। पटना और मुंगेर में डाक विभाग के कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पटना में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा सुपौल, सीतामढ़ी, अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में तिरंगे की बिक्री की जा रही है। लोग 25 रुपए की दर से अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद के बारून स्थित राजकीयकृत केशव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सह समन्वयक शशि भूषण को 10,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिक्षक NIOS के अंक पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वाल्मीकिनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं मधुबनी के झंझारपुर में सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
दिनांक 14 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के तिक्की नया टोला में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने लगभग 10 राउंड फायरिंग की। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से 10 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जीटी बाईपास ओवर ब्रिज के पास यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जुलाई महीने की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अररिया और सीतामढ़ी में आज पीएम सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों से अधिक संख्या में सोलर पैनल लगवाने की अपील की गई। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली STET के लिए आवेदन करेंगे। और राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।